है, एक पत्थर वो है जो ठोकर को खाता है। पत्थर दोनों एक है कानों से निकलते हैं, पत्थर दोनों एक है कानों से निकलते हैं। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। एक फूल वो है जो वेदी पे जड़ता है, एक फूल वो है जो वेदी पे चढ़ता है, एक फूल वो है जो अर्थी पर चढ़ता है। फूल दोनों एक है गुलशन में खिलते हैं, फूल दोनों एक है गुलशन में खिलते हैं। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। एक मोती वो है जो माला में फिरता है, एक मोती वो है जो माला में फिरता है, एक मोती वो है जो सड़कों पर गिरता है। मोती दोनों एक है सीपों से निकलते हैं, मोती दोनों एक है सीपों से निकलते हैं। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। एक भाई वो है जो विषयों में रमता है, एक भाई वो है जो विषयों में रमता है, एक भाई वो है जो दीक्षा को डरता है। भाई दोनों एक है एक माँ के जन्मे हैं, भाई दोनों एक है एक माँ के जन्मे हैं। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। प्रत्यक्ष में मिलता है, परोक्ष में मिलता है, प्रत्यक्ष में मिलता है, परोक्ष में मिलता है। गुरुवर का आशीष तो सबको मिलता है, गुरुवर का आशीष तो सबको मिलता है। इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है, इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है।
मुक्ति पाते वो हमेशा के लिए तरते है, जो भी श्रद्धा से महापंत्र जाप करते है। मुक्ति पाते वो हमेशा के लिए तरते है। नमो अरिहंतानं अहं चित्तने, नमो तीर्थानं पढ़ां चित्तने, नमो आदियानं लिखां चित्तने। व्यक्ति वो आवागमन हद को पार करते हैं, मुक्ति पाते वो हमेशा के लिए करते हैं। जो भी श्रद्धा से महामंत्र जाप करते हैं, मुक्ति पाते वो हमेशा के लिए करते हैं। नमो अच्छायानम का जप करके, नमो लोए सर्व साहुनम के, योनि चोरा त्रिलाख से फटके। व्यक्ति को आवागमन हद को पार करते हैं, मुक्ति पाते वो हमेशा के लिए करते हैं। जो भी श्रद्धा से महामंत्र जाप कर मुक्ति पाती वो हमेशा के लिए करती हूँ।
मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भई अरहंता दिमा। जो विद्यादि सागर सुधीर जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी के, आचार्य कुंद कुंद स्वामी के, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। हम सभी लोग अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए विचारों की दृढ़ता और स्थिरता कैसे जीवन में आए, इसके लिए भावना या अनुप्रेक्षा का चिंतन कर रहे हैं। हम अपने जीवन में देखें तो जैसे जल में अगर तरंगें उठती हैं या जल गंदा होता है तो उसमें झांकने पर हमें अपना चेहरा स्पष्ट और साफ नजर नहीं आता। ऐसा ही हमारे अपने जीवन में भी अगर अस्थिरता हो, हमारा मन अगर पांच इंद्री के विषयों में लालायत और आशक्त हो और हमारे मन में बहुत प्रकार की काषायिक मलिनता हो, तो अपना स्वयं का जो आत्मदर्शन जिसे कहें वो नहीं हो पाता। हमारे अपने आत्मा के उस विशुद्ध स्वरूप की हमें प्रतीति हो ही नहीं पाती। अगर एक बार हमें अपने उस आत्म स्वरूप की प्रतीति हो जाए, उसका दर्शन हो जाए, तो हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। इसलिए ये विचार हमारे मन में उत्पन्न होना चाहिए कि मुझे अपने आत्मा के स्वरूप को देखना है, मुझे उसका दर्शन करना है। वास्तव में ये जो अपन कहते हैं कि भगवान के दर्शन करना, भगवान का साक्षात करना या भगवान से मिलना, ये एक्चुअली है क्या चीज़? ये अपने ही आत्मस्वरूप का दर्शन करना, आत्मे ही अपने ही आत्मस्वरूप की अनुभूति करना, उसका साक्षात्कार करना और उसमें लीन हो जाना, यही भगवान में लीन होने का अर्थ है। संसार में यही एक चीज है जो कि दुर्लभ है, हमें आज तक प्राप्त नहीं हुई है। हमारे मन में अगर ये विचार उत्पन्न हो, उसे हम दृढ़ और स्थिर बनाएं, तो कोई वजह नहीं है कि हम अपने मन में उठने वाली इन लहरों को और अपने मन की काषायिक मलिनता को दूर ना कर सकें। ये जितनी जितनी दूर होती जाएंगी, हमारे मन में, वाणी में और शरीर में जो चंचलता है, जो सक्रियता है, वो जितनी घटती चली जाएगी। हम मन, वाणी और शरीर से जितने अधिक अपने आप में सीमित हो जाएंगे और हमारे मन में जो काषायिक भाव हैं वे जितने घटते चले जाएंगे, उतना ही मानिएगा कि हम अपने स्वरूप की तरफ, अपने आत्मा के दर्शन के लिए और योग माने जाएंगे। ये योग्यता हमें हासिल करनी है, एक विचार हमारे पास। लेकिन अभी तो हमारे साथ मुश्किल ये है कि जिस देह में हम रहते हैं वो देह का ही दर्शन हो पाता है, और देह का दर्शन भी ठीक ठीक नहीं हो पाता। अपना जैसा चित्त होता है वैसी ही यहाँ पर दुनिया दिखाई पड़ती है, ये सब जानते हैं। और कहने भी आता है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसा हमने सोच रखा होगा अपने मन में वैसा ही दिखेगा। अब जब हमारा सोच कषाय से युक्त है, कषायवान चित्त है और मन वचन काय में स्थिरता नहीं है, ऐसी स्थिति में हम जो भी देखेंगे वो वास्तविक नहीं होगा। वो तो हमें अपने मन में उठने वाली तरंगों और हमारे मन में होने वाले जो रंग हैं, रंग और तरंग ये दोनों ही चीजें, तरंग तो मन वचन काय की जो सक्रियता है वो है, और रंग क्या है जो हमारे जीवन को रंग करके और विभिन्न रंगों में हमारे जीवन को प्रकट करता, हमारी उज्ज्वलता उन रंगों में ढक जाती है। वो कषाय के रंग है, क्रोध का अलग रंग है, मान माया और लोभ के अलग रंग है, और उन रंगों में हम रंगे हुए अपने जीवन में जो हमारी उज्ज्वलता है उसको भूल चुके हैं। ऐसी स्थिति में और हमें पहला कार्य यही करना चाहिए कि हम या तो इनको धीरे धीरे घटाएं तो हमें अपनी वास्तविकता मालूम पड़े, या फिर जिन्होंने अपनी इस वास्तविक स्वरूप को आत्मदर्शन जिन्होंने कर लिया है उनके द्वारा उस स्वरूप को समझ करके उसकी तरफ दृष्टि दें तो ये सारी चीजें अपने आप हटने लगी। एक मैं उदाहरण सुनाया करता हूँ हमेशा, मैं जब पढ़ता था तब भी मुझे उसको पढ़ करके बड़ी हंसी आती, आपको भी लगेगा कि हाँ हंसने की बात तो है, पर वो अपने ऊपर नहीं हंसा जा सकता, उसी चीज को अगर अपने ऊपर घटित करेंगे तो हंसी नहीं आएगी, पर वो दूसरे के ऊपर घटित होते देखकर तो हंसी आती। एक बिल्ली थी, वो सेठ जी के यहाँ पर उनने पाल रखा था उसको, तो उसकी और भी बहुत सहेलियां थी, बड़े आदमी के घर में तो बिल्ली भी हो तो उसकी बहुत सहेलियां हो जाएंगी, है ना, ये अपन भी देखते हैं संसार में पैसे वाले के आगे पीछे, तो उस बिल्ली की बहुत सारी सहेलियां थी। एक बार ऐसा हुआ कि सेठ जी ने जो है प्लान करा कि विदेश यात्रा पर जाएंगे, अब विदेश यात्रा पर जाएंगे तो उनको तो अपनी बिल्ली बहुत प्रिय थी, तो उन्होंने कहा हम इसको भी ले जाएंगे। अब ये हवा और सब दूर फैल गई, बिल्ली की जितनी भी सहेलियां थी वो सब जो है आ गई और उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने लगी कि अरे तुम तो विदेश यात्रा पर जा रही हो, और फिर और वहां सुनते हैं कि वहां तो कोहिनूर हीरा भी है और वो जो तुम जिनके यहाँ जाओगी महारानी के, उनके तो मुकुट में वो जड़ा हुआ है, माला में जड़ा हुआ है, वो जरूर तुम देख करके आना, और बहुत बहुत प्रकार की अपने अपने लिए जो जो जिसको चाहिए था विदेश से वो सब लिस्ट बनवा दी बिल्ली रानी को कि ये सब खरीद के वहां से रहना। आ रही ना हंसी, ऐसे ही तो अवन करते हैं और ज्यादा कुछ थोड़ी है। बाहर जब तक दृष्टि है तो हमारे मन में कितनी तरंगें उठती मन वाणी और शरीर में, और हमारे अंदर जो क्रोध मान माया लोभ के भाव हैं वो ये सारा प्रपंच तो करते ही है, बाहर का जितना खेल है वो सब इन्हीं पे निर्भर है, और ये जितने शांत हो जाते हैं तब फिर भीतर क्या चल रहा है तब मालूम पड़ता है, वास्तविकता तो तब मालूम पड़ती। अब वो गई बिल्ली और सेठ जी के साथ में, उसने विदेश घूमा सब कुछ, महारानी से मिली, कोहिनूर हीरा भी उनका देखा, बैठी रहती थी बाजू में सेठ जी के पास में। जब वो वापस लौटी तब फॉरेन रिटर्न का तो वैल्यू तो होती, तो सब लोग उसको और बिल्लियां मिली, सबने उसको कोई एक पार्टी वार्टी करी, जो भी होता है जैसे अपन लोग करते हैं तो पार्टी वार्टी करी, फिर सबने उसके अपने संस्मरण पूछे। सबसे मजेदार बात तो ये कि संस्मरण पूछे कि क्या क्या देखा, कैसा लगा विदेश, तो जो भी जिसने पूछा तो वो हाँ हूं करती रही कि हाँ ये भी था। बोले तुम सही बताओ कि तुमने वहां पर वास्तव में क्या तुम्हें बहुत अच्छा लगा। बोले और तो सब चीजें ठीक हैं, वहां पर चूहे बहुत मोटे मोटे बहुत बड़े हैं। अब बिल्ली को क्या देखेगा, बिल्ली को कहीं भी ले जाओ उसको चूहे के अलावा कुछ नहीं दिखता, दुनिया में और क्या है इससे कोई मतलब नहीं। बस यही है कि जैसी दृष्टि हमारे भीतर, जिस तरह का विचार हमने जिस चीज के बारे में बना लिया है जिसको अपन प्रीजुडिस कहते हैं, पूर्व धारणा, देह के प्रति अगर हमारे मन में उसके प्रति इष्ट का भाव है तो हम उसमें आसक्त हो जाते हैं, देह के प्रति या तो हमारे मन में घृणा का भाव होता है, द्वेष का भाव होता है, तो हम उससे अनाशक्त हो जाते हैं, उससे घृणा और ग्लानि करने लगते हैं, और इस देह से जुड़ी हुई सारी चीजें ये भी हम इसमें स्तनिष्ट की कल्पना कर लेते हैं, और अपनी कषाय और अपने मन वचन काय की सक्रियता को निरंतर बढ़ाते ही चले जाते हैं। ये इतनी छोटी सी चीज अपन को समझने की, हमारे भीतर आत्मदर्शन करके देखें तो सुचिता हमारा अपना स्वभाव है, लेकिन बाहर के जगत में देखें तो सबसे निकट जो हमारी देह है वो अत्यंत अपवित्र है, यह वास्तविकता है। मेरी आत्मा में सुचिता है, पवित्रता है, पवित्र होने की सामर्थ्य है, लेकिन मेरी देह में से कितना भी पवित्र और निर्मल बनाने का प्रयत्न करूं यह पवित्र नहीं हो सकती, क्योंकि यह स्वभाव से ही अपवित्र है। यह एक विचार हमारे भीतर हम धीरे धीरे इसको डेवलप करें, देखें कि क्या इस विचार से हमारे जीवन में कोई ऊंचाई आ सकती है। वैसे तो सामान्य रूप से अपन लोग देह अपावन अथिर घिनावन या में सार न कोई है, सागर के जल सो सूची कीजिए तो भी शुद्ध न हो, ऐसा अपन कहते हैं, लेकिन फिर भी रोज घंटे दो घंटे तो इसको धोने में तो लगते हैं, इसको सजाने में तो लगते हैं। तब ये थोड़ी सी बाहर निकलने लायक होती है, तब इसके साथ हम जी सकते हैं। अगर एक दिन इसको ठीक से नहलाएं धुलाएं नहीं तो दूसरे दिन इसमें ही रहना मुश्किल लगने लगता अपन को खुद को। यह देह भी अगर रोग से ग्रस्त हो जावे तो बोझ लगने लगती, यह देह मलिन हो जावे तो अपने लिए ही इससे घृणा होने लगती। दूसरे को तो होती है, दूसरे की देह से तो घृणा और आसक्ति होती है भैया। अपनी देह से आसक्ति तो सबको होती, लेकिन घृणा भी होना, ऐसा नहीं समझना कि घृणा नहीं हो सकती, घृणा भी होती। आचार्य भगवंत हमें क्या दृष्टि दे रहे हैं, क्या विचार दे रहे हैं कि यह देह अपावन है, अपनी होवे चाहे दूसरे की होवे, इसको कैसा देखना, अपावन ही देखना, और इसके पवित्र बनाने की ज्यादा कोशिश नहीं करना, और दूसरे की देह को देखकर आसक्त नहीं होना। ये दोनों ही चीजें हमें इस विचार से अपने जीवन में प्रकट होते देखना चाहिए। अभी प्रकट नहीं होती, ये विचार तो है, लेकिन ये दोनों चीजें हमारे जीवन में नहीं आती। मैं अपनी इस देह को पवित्र बनाने में अपना समय व्यक्त करता हूं, पहली चीज, और दूसरे की देह देख करके उसमें आसक्त हो जाता, क्योंकि दूसरे की देह मुझे साफ सुथरी दिखाई पड़ती है। मैं भी बाहर जब निकलता हूं तो अपनी देह को दूसरे के दिखाने लायक बना के निकलता हूं, वरना यह अत्यंत अपवित्र है, दूसरा देख करके इससे घृणा कर बैठेगा। तो हम अपनी देह को इतना साफ सुथरा बना के निकलते हैं कि दूसरे को घृणा ना हो, लेकिन अपनी ही देह के बारे में हमारे मन में उसे पवित्र बनाने की भावना और दूसरे की देह को देखकर उसमें आसक्ति, जबकि जब इसे हम लहलाते धुलाते हैं तब इसमें आसक्ति नहीं होती, तब तो बड़ी घृणा लगती कि ये गंदा लगा हुआ है, ये लगा हुआ जी भीतर इसके दोनों में जो चीज है, बाहर लग जावे अगर तो, और ज्यादा नहीं कह रहे हम, इतना ही कह रहे, ये अपने हाथ में ही लग जावे तो कैसा लगता, भाई धुलाओ हाथ धुलाओ, तो भीतर तो बहुत सारी रखी इसके भीतर। अब बताइएगा ऐसी स्थिति इस देह की, स्वयं विचार करना चाहिए अपने को, ऐसा विचार करके क्या करें, इस देह से घृणा कर ले मैं? नहीं, ये नहीं सिखा रहे। दूसरे की देह से आसक्ति नहीं करना और अपनी ही देह के मलिन हो जाने पर उससे घृणा नहीं करना, तब फिर क्या करना, दोनों के बीच में वास्तविकता का बोध बना रहे तो इस देह का सदुपयोग अवश्य कर लेना, बस इतना ही है। अगर ये दृष्टि हमारे भीतर आ जावे, ये विचार हमारे भीतर आ जावे कि मुझे इस देह की नश्वरता का, इस देह की अपवित्रता का विचार करते हुए इस देह का सदुपयोग कर लेना चाहिए। नश्वर चीज किस दिन नष्ट हो जाएगी कहा नहीं जा सकता, और अत्यंत घृणित है, इस घृणित के बीच में भी मुझे उस पवित्र आत्मा का दर्शन कैसे हो जावे, इसके लिए मैं इसे तैयार करूं, तो इस देह की पवित्रता के लिए मैं क्या करूं? देह की पवित्रता तो रत्नत्रय से होती है, वैसे तो अपावन है लेकिन रत्नत्रय पवित्र दे। कोई अगर इसमें बैठी हुई आत्मा रत्नत्रय अंगीकार कर ले तो देह भी पूज्य हो जाती है, देह भी पावन हो जाती है, बताइएगा, जबकि अत्यंत अपवित्र है यह, पर यह भी हमारे लिए पूजने योग्य हो जाती। क्यों? क्योंकि उसके भीतर बैठी हुई आत्मा रत्नत्रय से पवित्र हो गई। तब फिर मैं क्या करूं, मैं भी उस रत्नत्रय की आराधना करूं, उस रत्नत्रय को अपने जीवन में धारण करने के लिए प्रयत्न करूं, देह की तरफ दृष्टि कम करूं, अपने आत्मा की तरफ दृष्टि अधिक रखूं। यह संदेश इस विचार से मिलता है। और देह के स्वभाव के बारे में थोड़ा सा विचार कर लें ताकि वास्तविकता मालूम रहे कि स्वभाव कैसा है। दुर्जन देह स्वभाव बराबर मूरख प्रीति बढ़ा, और राचन योग स्वरूप न जाको विरचन योग सही है। यह तप यह तन पाए महा तप कीजे या में सार यही। इतने में इस देह के बारे में बात स्पष्ट, क्या विचार होना चाहिए। और अगर मंगत राय जी से पूछेंगे तो वो कहते कि काना पौड़ा पड़ा हाथ जो चूसे तो रोवे, फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय हो। देह की अपवित्रता का विचार करके देह से घृणा नहीं करना, बल्कि इस देह का क्या उपयोग हो सकता है, सदुपयोग हो सकता है, इसका विचार करना।
माना कि देह अपावन है, क्या करें, इसे उठा करके फेंक आए? नहीं, फेंकने के लिए नहीं कह रहे हैं, ये तो सौभाग्य है कि मनुष्य की देह मिली हुई है, ये भी कह रहे हैं है अपावन, लेकिन ये सौभाग्य है कि देह मनुष्य की है, भले ही अपावन हो। तो यह तन पाए महातप कीजिए, अगर हम इस देह को प्राप्त करके तपस्या करते हैं तो यह निस्सार देह भी हमारे लिए सारभूत आत्म तत्व को दिलाने में मदद करने वाली। वास्तव में तो ये काने पौड़े की तरह है, जैसे कि गन्ने में कीड़ा लग जाता है तो ऊपर से नीचे तक वो लाल हो जाता, फिर चूसने लायक नहीं रह जाता, खाने लायक। चूसे तो रोवे, चूसेंगे अगर इतना कड़ा हो जाता है कि चूसने में दांतों में ही तकलीफ होने लगती, आंसू आने लगते हैं। तो कहते क्या करें फिर, उसको अगर हम छोटे छोटे टुकड़े बना करके और जमीन में बो देवे तो उसी में से और अच्छे गन्ने निकलेंगे, तो उससे हम उसका रस और आनंद ले सकते हैं। तो जैसे कि गन्ने के बारे में है, ऐसे ही इस देह के बारे में है, अगर इसे हम चूसेंगे अर्थात इसे विषय कषाय में लगा देंगे तो क्या होना पड़ेगा, रोना पड़ेगा अंततः। और अगर इसी से विषय कषाय से बच करके और इसको धर्म ध्यान की भूमि विषय भोगे, अगर इसे धर्म ध्यान में लगा देते हैं, इस देह से भगवान की पूजा आराधना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं और आहार दान इत्यादि करते हैं, तो यही देह सुबह से शाम तक धर्म ध्यान में लग करके और हमारे अनंत फल देने वाली अर्थात आत्मा के अनंत चतुष्टय की प्राप्ति में कारण बन सकती है यही देह। तो देह को साफ सुथरा बनाने का से इनकार नहीं है, देह को साफ सुथरा बनाओ, लेकिन देह की पवित्रता नहीं हो सकती है, उसको साफ सुथरा बना के तो अपने आत्मा की पवित्रता करनी है, क्योंकि देह तो मानो मंदिर के समान है जिसमें कि वह आत्म तत्व विराजमान है, जैसे मंदिर में देवता विराजमान होता है। भारतीय संस्कृति में देह को मंदिर माना गया, ये क्या विचार रहा होगा। जैसे कि हम मंदिर में झाड़ू पोछा लगाते हैं, जैसे हम मंदिर का ठीक ठीक रख रखाव करते हैं, लेकिन उस मंदिर की कीमत कम मानते हैं। जब वेदी पर भगवान विराजे हो तो वैसे कोई मंदिर नहीं आता, अगर वेदी भगवान ना हो कोई नहीं उसकी साफ सफाई करेगा, खंडर पड़ा रहेगा, भगवान की मूर्ति ले जाओ तो कोई नहीं आएगा। लेकिन उसमें जो भगवान की प्रतिमा विराजमान है, इसलिए वह मंदिर भी हमारे लिए साफ सुथरा रखना चाहिए। अब मंदिर साफ सुथरा जैसे रखते हैं, ऐसी क्या देह को भी साफ सुथरा रख सकते हैं? रख सकते हैं। तो हम तो रोज रखते महाराज जी, आपने बहुत अच्छा काम, तो 2-3 घंटे लगते हमको नहा धो के मेकअप वगैरह करके तैयार होने में, तो आप तो यही तो कह रहे। नहीं, देह ऐसे ऐसे साफ सुथरी नहीं होगी, इसके भीतर साफ सुथरा डालना, इसके भीतर बैठा हुआ चित्त भी साफ सुथरा होना चाहिए, तब जाकर के होगी साफ सुथरी देह। भगवान इसमें जितने निर्मल हैं, उनकी निर्मलता ही इस पूरे परिसर को निर्मलता देती है। लिखा है वादिराज महाराज ने कि मानस तंबो, अब वो पूरा याद ही नहीं आ रहा, एकदम विस्मृत होता है, अच्छा वो समय 15वें नंबर का काव्य है एक ही भाव स्तोत्र का, चलिए उसका भाव देख लेते हैं। भगवान पाषाण आत्मा तदितर समा केवलम रत्न मूर्तिर मानस्तंभो भवति च परस्तादृशो रत्नवर्गः दृष्टि प्राप्तो हरति स कथम मान रोगम नराणाम प्रत्यासक्तिर यदि न भवता तस्य तत्शक्ति हेतु। हे भगवान, ये जो मानस्तंभ बना है वो तो पाषाण का है, सो ऐसे पाषाण तो और भी संसार में। अरे भाई, आप ये कहो कि इसमें रत्न जड़े हैं, तो ऐसी क्या विशेषता है रत्नों के जड़ने से, ऐसे रत्न तो और भी संसार में पड़े हैं। फिर ये क्या बात है कि इस मानस स्तंभ के दर्शन करते ही संसारी प्राणियों का मान रोगी रूप, मान रोग जो है वो नष्ट हो जाता है? तो कहते प्रत्यासत्तिर यदि न भवता तस्य तत्शक्ति हेतु, इस मानस स्तंभ में अगर जीवों के मान को खंडित करने की सामर्थ्य आई है तो उसका एक ही कारण है कि आप में उसमें आप विराजमान हो। प्रत्यासत्तिर, आपकी निकटता से वह मानस स्तंभ इस सामर्थ्य को प्राप्त हो गया है। ऐसे ही क्या हम विचार नहीं कर सकते हैं कि मेरी देह जो है कैसे सामर्थ्यवान हो गई है, इस संसार में हो सकती है? तो अपने उस आत्म स्वरूप की तरफ अगर मैं देखूं, देह में बैठे हुए देही की तरफ मेरी दृष्टि रहे, तो यह देह भी मेरे लिए कल्याण का कारण बन सकती है, सारभूत हो सकती है। वरना देह के साथ तो ऐसा है कि इसको रोज जो है आप कितने ही नहलाओ धुलाओ और बढ़िया से बढ़िया इसके लिए सुगंधित पदार्थ लगाओ, पर देह परस्ते हो तपावन निशदिन मल झाड़ी। देह का स्पर्श पाकर के आज तक कोई भी चीज पवित्र नहीं हुई, अपवित्र ही हो गई। आप अपने गले में माला डाल के और उतार के दूसरे को दे, फेंक देगा वो कि उतरी हुई है। आपकी देह का स्पर्श हो गया, अब वो किसी के योग नहीं रही। अपन स्वयं ही अपने मुंह में और रसगुल्ला रख ले में थोड़ी देर, और फिर बाद में बाहर निकाल के फिर खाओ, चाहे तो नहीं खा पे, गरीब खराब हो गया। ऐसी स्थिति इस देह की है, फिर भी इसमें सारभूत है कुछ, वो देखना चाहिए। अभी अपन को जो है इसमें, इस निस्सार देह में सारभूत आत्म तत्व नहीं दिखाई पड़ता है। जब अपन ये 12 भावनाओं में असुचि भावना भाते हैं तो उसका प्ररूपण भी ऐसे किया जाता है, अरे देह तो बड़ी गंदी है और घृणा करने योग्य है। नहीं भैया, ये नहीं सिखाया जा रहा अनुप्रेक्षा में। भावना तो ये बताई जा रही कि इस देह में यह अपवित्र है, इसलिए आशक्त मत होना, क्योंकि दुर्जन और देह का स्वभाव एक सा है। ये मूर्खता होगी कि हम देह में प्रीति बढ़ावें। दुर्जन से जैसे कोई प्रेम रखे तो क्या होगा, अपनी सज्जनता और खो देगा वो, और दुर्जन कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। ऐसे ये कभी संतुष्ट नहीं होगी, इसकी कितनी सेवा कर लो आप, ये कहना चाह रहे हैं। इसलिए इसकी सेवा छोड़ो, इससे तो काम लेना सीखो, इससे तो तपस्या करना सीखो, इससे तो अपने आत्मा को पवित्र बनाने की प्रयत्न करने की बुद्धि अपने भीतर जागृत करो, इसके माध्यम से, ये कहना चाह रहे। मैं आपको वो घटना सुनाने के मूड में था कि दो दो तीन तीन घंटे हम इस देह को कितने भी नहलाएं धुलाएं, फिर भी अपवित्र ही अपवित्र रही आती है। कोई भी चीज अपने जीवन में जो भोग विलास की मिली हुई है, अगर वही बार बार रिपीट होने लगे तो देखिएगा कैसे उसके प्रति हमारे मन में और घृणा होने लगती है। आज संसार में अगर देखा जाए तो परिवर्तन हुआ है, तो एक बड़ा परिवर्तन हुआ, और बाकी सब चीजें तो अलग चीज है। जो हुआ हो सो वो आप जानो, कहते कि जमाना बदल गया है। बहुत लोगों के मुंह से सुनने में आएगा कि जमाना बदल गया। तो जमाना बदल गया तो बदल क्या गया भैया, ये भी तो बताओ। कोई नहीं बताता, बस इतने कहते जमाना बदल गया। तो क्या बदल गया इसमें, सब तो वैसे ही है। रोटी वो खाते थे पहले, सो अपन खाते, दाल खाते थे सो दाल खाते, बेबी रहते थे अपन भी सांस लेते, सब बातें का जमाना बदल गया। इसकी एक छोटी सी घटना पड़ी थी मैंने कि आज वर्तमान में हुआ क्या है। वास्तव में देखा जाए इस भावना की कमी हो गई, देहा शक्ति बढ़ गई है। एक ही चीज अगर परिवर्तित हुई है तो ये चीज हुई है, बहुत अधिक मात्रा में यह चीज बढ़ गई। और जितनी देह पंचम काल जितना घटता जाएगा, कम हो, जितना अंत की तरफ जाएंगे और छठे काल में आएंगे, धर्म कर्म दोनों लुप्त हो जाएंगे। देहा शक्ति और भोगों की आशक्ति यही जीव को धर्म से विमुख कर देगी, वह धर्म शून्य हो जाएगा। आज जीवन में ये दोनों चीजों ने व्यक्ति को धर्म से शून्य बनाया है, और कुछ नहीं हुआ है। धर्म आज भी है, कर रहे हैं लोग धर्म, लेकिन बाह्य क्रियाओं को ही धर्म मान करके कर रहे हैं, पर देह शक्ति और निरंतर जो है भोगों के प्रति आशक्ति, भगवान की पूजा करते हुए भी वही चाहिए मुझे, मुझे वो प्राप्त हो जाए, अपार धन संपदा वैभव पांच इंद्री के विषय प्राप्त हो जाए, मुझे सुंदर देह प्राप्त हो जाए, मांगते हम वही। इस देहाशक्ति को घटाने के लिए अनुप्रेक्षा रखी गई है। वो जमाना बदलने वाली चीज में आपको उदाहरण सुना रहा था, तो जब किसी से बार बार कहा गया कि बताओ तो क्या जमाना बदल गया, तो ने घटना सुनाई, वो हम आपको सुनाए थे। बोले क्या हुआ, बुजुर्ग हो गए, वो सुना रहे हैं कि हम जब 20 वर्ष के थे अपनी माँ के साथ में, और चले जाते थे बैलगाड़ियों से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बैलगाड़ियों से जाया करते थे। रात में कहीं पर नदी के किनारे बैलगाड़ी रोक करके वहीं रात्रि विश्राम पेड़ के नीचे कर रहे थे, उतने में छपाक की आवाज आई, तो भाग करके देखा तो नदी में और कोई कूद गया है। रात के थोड़े से अंधेरे में शायद वो जीवन से निराश कोई व्यक्ति होगा, या कि पैर फिसल जाने से गिर गया होगा, पर कुछ है और कुछ नहीं हुआ। धर्म आज भी है, कर रहे हैं लोग धर्म, लेकिन बाह्य क्रियाओं को ही धर्म मान करके कर रहे हैं, पर देहा शक्ति और निरंतर जो है भोगों के प्रति आशक्ति, भगवान की पूजा करते हुए भी वही चाहिए मुझे, मुझे वो प्राप्त हो जाए, अपार धन संपदा वैभव पांच इंद्री के विषय प्राप्त, मुझे सुंदर देह प्राप्त हो जाए, मांगते हम वही।
इस देहाशक्ति को घटाने के लिए अनुप्रेक्षा रखी गई। वो जमाना बदलने वाली चीज में आपको उदाहरण सुना रहा था, तो जब किसी से बार बार कहा गया कि बताओ तो क्या जमाना बदल गया, तो ने घटना सुनाई, वो ही हम आपको सुनाए। बोले क्या हुआ, बुजुर्ग हो गए वो सुना रहे हैं कि हम जब 20 वर्ष के थे अपनी माँ के साथ में, और चले जाते थे बैलगाड़ियों से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बैलगाड़ियों से जाया करते थे। रात में कहीं पर नदी के किनारे बैलगाड़ी रोक करके वहीं रात्रि विश्राम पेड़ के नीचे कर रहे थे। उतने में छपाक की आवाज़ आई, तो भाग करके देखा तो नदी में और कोई कूद गया। रात के थोड़े से अंधेरे में शायद वो जीवन से निराश कोई व्यक्ति होगा, या कि पैर फिसल जाने से गिर गया होगा, पर कुछ विचार किए बिना ही और माँ ने इशारा किया कि जाओ बचाओ उसे, तो फौरन कूद करके जब उसे बचा करके लाए तो अभी अभी नव विवाहित कोई बहन थी। शरीर पर सारे जेवरात हैं, रूप अत्यंत सुंदर है, और बेहोश हो गई पानी में डूबने से। बाहर लाए, उपचार किया, माँ है और 20 वर्ष का पुत्र है, उपचार कर रहे हैं। अब विचार अपने अपने अलग अलग, अब सबकी सोचने में आ रहा होगा, सबका अलग अलग विचार चल रहा होगा, सबका अलग अलग विचार, सबकी अलग अलग दृष्टि है। हाँ, अब उपचार के समय तो क्या नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, सब कुछ किया। अब रात्रि में कहाँ इसे भेजें, कहाँ पहचान कराएं कि किसकी ये बहू है, बेटी है, किसकी बहन है, कोई खोजते ही आएगा तब आएगा, पर रात तो अभी इसकी सुरक्षा करनी है। तो बेटा एक तरफ लेटता है, माँ दूसरी तरफ, बीच में उसे लिटा लेते हैं, होश में आ गई है और शांति से सारी रात व्यतीत होती है। वो अपने संस्मरण में लिखते हैं कि सुबह उनके भाई बंधुओं को सौंपने के बाद क्या चीज है, सारी रात ना उसके साथ दुर्व्यवहार करने का मन हुआ और ना उसके जेवर उतारने का मन हुआ। अब तो लेकिन जमाना बदल गया, बस इससे ही कहा। उस समय वो सुनाते हैं कि उस समय ना तो उसके जेवरात उतार के चुराने का, ना उसके साथ दुर्व्यवहार करने का मन हुआ, लेकिन आज तो जमाना बदल गया, बस इतने, ये है जमाना बदल गया। ये पढ़ करके मुझे लगा कि इनने बिल्कुल ठीक कहा कि जमाना बदल गया है का मतलब क्या हुआ, सबके समझ में आया। आज हमारे मन में यही चीज, देहाशक्ति सब तरफ आज नई पीढ़ी के अंदर अपन देख रहे हैं। कितनी कितनी घटनाएं सुनने में आती हैं, किस वजह से होता है ये सब, एक ही चीज है। हमने अपने बच्चों को आत्मदर्शन की शिक्षा नहीं दी बचपन से, हमने देह दर्शन ही कराया क्योंकि हम भी उसी में लगे रहे। लिखा हुआ है कि ब्याह होने के बाद जब तक पुत्र नहीं हुआ तब तक ही भोगा शक्ति सुंदर है, तब तक ही योग है, जैसे ही पुत्र उत्पन्न हो अब दोनों ज्यादा भोगा शक्ति में ना लगे, वरना उसे संस्कार नहीं दे पाएंगे उस पुत्र को। लेकिन आज तो यह स्थिति बदल गई। ये अनुप्रेक्षा हमें ये विचार दे रही है कि हम इन चीजों से थोड़ा सा अनासक्त हों, अपनी और दूसरे की देह दोनों में आसक्ति घटाएं, और अपने भीतर अगर उस आत्मस्वरूप की पवित्रता का दर्शन करने की आंख पैदा कर ले गए, फिर देखिएगा कि हमारी जीवन की स्थिति कुछ और होगी। हम अपने जीवन को बहुत अधिक सुख और शांति से जी पाएंगे, बहुत अच्छा महसूस करेंगे। इतनी सी ये चीज इस अनुप्रेक्षा के माध्यम से, एक ये छोटा सा विचार अगर हमारे भीतर में हम उत्पन्न कर लें, इस देह को जो बाहर दिखाई पड़ती है, अगर मुझे देखना भी है तो इस देह के भीतर बैठी हुई इस चेतना को देखें, सम्मान करना है इस देह का नहीं, इस देह के भीतर बैठी हुई उस चेतना के गुणों का मैं सम्मान करूं। अगर ये दृष्टि मुझे प्राप्त हो जाए सबसे फिर बहुत सुख और शांतिपूर्वक हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं, इसी भावना के साथ कि हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं। बोले
गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग तीन स्वरता शाश्वता दिग दर्शन करने वाला है। अश्वा वह शिव के निष्कंटक पथ में निष्कंटक होता हो। तव शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की गलियों में। भवंदन कर कर टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां। दिन रात लुटाया करते वो सम सम के अभिनय कर भैया। हे शांति त्याग से मूर्ति मान शिव पथ अंति गुरुवर प्रण मिथ्या समनाश को भांत प्रकाश को आप पर वास को भानु से बसानी है। अनुभव बताए वे को जीवों के जताए वे को अभुना सताए वे को भागे उड़े आनी है।
दर्शन की प्यास जहाँ एक ओर हमारे मन को विहल कर देती है, वहीं दूसरी ओर भगवान का दर्शन पाकर मन आत्मविभोर हो जाता है। ये मंदिर इसलिए कि हम आ सकें बाहर से अपने में भीतर, ये मूर्तियाँ अनुपम सुंदर इसलिए कि हम पा सकें कोई रूप अपना ही अनुत्तर, और श्रद्धा से झुककर गलाते जाए अपना मान परत दर परत निरंतर, ताकि कम होता जाए हमारे और प्रभु के बीच का अंतर, हमारी वीर भरो भाव की।
दया मृत सागर ले
शिकायत करें पूछें कि ये सब किसने किया। जीवन भर किसी दोहरे गणित में हम जीते हैं और समझ नहीं पाते कि अच्छा बुरा चाह अनचाह अपने लिए सब हम ही करते हैं। हम अपने मन वाणी और कर्म को संभालें और प्रभु का ध्यान करें जो हमारे भाव भाव की पीड़ा को पार लगाने वाला है। होनी जितनी सच है उतनी ही अनहोनी भी सच है। जीवन में हम सभी को ज़रूरत होती है सहारे की। हम सभी खोजते हैं सहारा और अंततः धन संपदा, परिवार और मित्रजन सबको छोड़कर हमें जाना पड़ता है। अशरण और बेसहारा जीवन को शरण और सहारा देने वाले हैं परम विशुद्ध अवस्था में लीन अनंत और सिद्ध परमात्मा आचार्य उपाध्याय और साधु और हमारा अहिंसा धर्म मेरे चारों शरण सहाय।
जैसे जलाधि परत वायस को, जैसे जलाधि परत वायस को, बोहित एक पाई मेरे चारों शरण सहाई, मेरे चारों शरण सहाई, मेरे चारों शरण सहाई। चेतन कौन अनीति गही रे, चेतन कौन अनीति गही रे, चेतन कौन अनीति गही रे, ना मान सुगुरु कही रे, ना मान सुगुरु कही रे, जिन विषयन वश बहु दुख पायो, जिन विषयन वश बहु दुख पायो, तिन सो प्रीत ठही रे, तिन सो प्रीत ठही रे, चेतन कौन नीति गही रे, चेतन कौन नीति गही रे, चेतन कौन अनीति गही रे, चेतन कौन।